सत्चित आनंद धन निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए ये बात बतलाई जाती है। ध्यान के लिए एकांत स्थान, निर्जन स्थान बहुत ही उत्तम है और ध्यान के लिए चित्त के बीच के मां वैराग और उपरति ये बहुत सहायक है। संसार में आसक्ति के अभाव का नाम वैराग है और संसार में जो प्रीति है उसका नाम राग है। चित्त की प्रीति का नाम राग और चित्त की प्रीति के अभाव का नाम वैराग। वो ये असंग, उस असंग शस्त्र के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को मिटा देना ये ऊपर थी। चित्त की प्रीति और चित्त की वृत्ति, संसार से प्रीति हटाना वैराग और चित्त की वृत्ति हटाना ऊपर थी। ये दोनों ही सहायक है ध्यान के लिए। इसी प्रकार से इस विषय निर्गुण निराकार के स्वरूप का जो प्रतिपादन जो शास्त्र है गीता आदि, उसका मनन इस विषय के मां सत्पुरुषों की वाणी का श्रवण ये भी बहुत ही सहायक है और निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा ये भी सहायक है।
इंद्रियों का संयम ये ध्यान में बहुत ही सहायक है। एकांत स्थान, पवित्र स्थान जिसमें कोई अल्लाह गुल्ला न हो, बने या पहाड़ों की गुफा, गंगा पथ, ये सब बहुत ही सहायक है। इसी उद्देश्य से ऋषि के स्वर्ग आदि स्थानों में जाकर के गंगा किनारे वृक्षों के मध्य में पहाड़ के रेती पर या गुफा में बैठ करके ध्यान की बात रहा करते हैं। आज इसी स्थान को ये सब मान करके के और ध्यान ऐसा लगाना चाहिए कि जिसमें अपने आप को भुला देना, एक परमात्मा के सिवा और किसी का भी ज्ञान नहीं रहना चाहिए। प्रथम आसन से बैठ करके कोई भी आसन हो, स्वस्तिक आसन, सिद्ध आसन, खुला पद्मासन या और भी कोई आसन हो, आसन से बैठना चाहिए जिसमें शरीर जीवा और मस्तक सजा रहना चाहिए, एक सूत्र पर रहना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन में कहा, स्थिरम सुगम आसनम, स्थिरता पूर्वक बैठा जा, सुख पूर्वक बैठा जा, वो ऐसा आसन है। सुमन का श्रू गिरियम, भगवान गीता में कहते हैं काया और गिरिया और मस्तक सजा रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, दम रहना चाहिए। धार्यम अतनम स्थिरम, ऐसे शरीर को अचल और स्थिर धारण करना चाहिए जिसमें किंचित मात्र भी क्रिया न हुए। एक पत्थर की मूर्ति की मापक स्थिर हो जाना चाहिए जिसमें कोई अंग नहीं हिले। उसके बाद में सत चित आनंद परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। सत माने परमात्मा है, भाव रूप देखो हूँ परमात्मा को भाव और उसके अलावा सब को अभाव। एक परमात्मा के सवाल कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, एक परमात्मा ही है। ये भाव असल उसके लिए गीता का ये श्लोक, ये तो अक्सर मनिर्देश में व्यक्तम पर उपास होते सर्वत्र चिंतन से कूटस्थ मतलब ध्रुव। गीता अध्याय 12 श्लोक 3। अर्जुन के ये पूछने पर कि कितने तो आपको आपके सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, जितनी अव्यक्त अक्सर निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है? इसके ऊपर भगवान ने दोनों प्रकार की ही बात बताई। दोनों कोई उत्तम बतवाते हुए दोनों का फल परमात्मा की प्राप्ति बतवाई। तो वहाँ निर्गुण निराकार के विषय में ये श्लोक बताया, ये तो निर्देश मैं व्यक्तम परिपास सर्वत्र गम चिंतन से कूटस्थ मतलब ध्रुव। का कैसा स्वरूप है निर्गुण निराकार का, अक्षरम, जिसका कभी क्षय नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ, उसको अक्षर कहते हैं। अनिर्देशम, जिसका निर्देश नहीं किया जा सके, उसी प्रकार से जिसको इंद्रता करके नहीं बतलाया जा सके, जिसको वाणी के द्वारा या संकेत के द्वारा इशारा कर करके अंगुली निर्देश से इस प्रकार का है, ऐसा है, जिसको किसी भी प्रकार से बतलाया नहीं जा सके, उसको अनिर्देशम, अव्यक्तम, जिसकी व्यक्ति नहीं हुए, आकार नहीं हुए, निराकार, और सर्वत्र गम, और सर्व जगह की मां व्यापक हुए, जिसके बिना कोई भी स्थान खाली न हो, आकाश से भी बढ़ करके के जिसकी व्यापकता, आकाश अपने कार्य में ही व्यापक है, वायु तेज जल पृथ्वी उसके कार्य है, विकार है, उसमें आकाश व्यापक है, और आकाश से सूक्ष्म श्रेष्ठ पदार्थ है, उसमें आकाश व्यापक नहीं, जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इसमें आकाश नहीं, किंतु परमात्मा तो सर्वगुणा है, परमात्मा के लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा न हो, ऐसा कोई काल नहीं कि जहाँ परमात्मा न हो, सब जगह है, बल्कि देश और काल यदि उसमें कल्पना मात्र है, वास्तव में परमात्मा देश और काल से रहित है, जिस समय में देश और काल है तो वहाँ सब जगह सब में सदा है, और अचिंत, जिसका कोई चिंतन नहीं कर सके, क्योंकि मन के विषय को ही मन चिंतन कर सकता है, वो मन का विषय नहीं, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसका निश्चय होता है, मन और इंद्रियों का वो विषय नहीं, इसलिए गीता में कहा है कि बुद्धि ग्राजम अतिंद्रियम, मन और इंद्रियों की जहाँ पहुंच नहीं है, और सूक्ष्म और शुद्ध हुई तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा जिसका निश्चय होता है, कूटस्थम अतलम ध्रुम, जो स्थिर है और अचल है, जो देश और काल कर करके विचलित नहीं होता, देश करके विचलित होना क्या, कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाना, एक देश में है और दूसरे देश में नहीं है, जिसमें चलन और हलन क्रिया नहीं, जैसे वृक्ष है उसमें चलन क्रिया तो नहीं है किंतु हलता है, किंतु बाहर जो है वो न चलता न हलता, तो इसमें दोनों क्रिया का आभार है, वृक्ष में चलन क्रिया का अभाव है, किंतु परमात्मा में चलन हरण सब क्रियाओं का अभाव है, ऐसा होते यदि वृक्ष और पहाड़ की माफक आकार वाला नहीं है, आकाश जो है आकार वाला तो नहीं है, किंतु महापल्ले में उसका अभाव हो जाता है, सदा नहीं रहता। तो परमात्मा का कभी अभाव होता ही, कभी किसी भी काल के बीच के मां उसका काल करके विनाश नहीं होता, क्योंकि वो काल का भी काल है तो वो अचल है। ध्रुव है, ध्रुव माने नित्य वास्तव के बीच के मां वस्तु से उसका अस्तित्व सदन है, भाव रूप परमात्मा नित्य सत्य भाव रूप है। ऐसा समझना कि परमात्मा है और आकार विकार से रहित, आकार से रहित, विकार से रहित, क्रिया से रहित, गुणों से रहित, इससे से रहित, माया और माया के कार्य से रहित, गुणों से अतीत, सतरजतम इन तीनों गुणों से अतीत, नित्य चेतन सनातन अज अविनाश शाश्वत अनादि पुराण पुरुष और नित्य परमात्मा की सत्ता से ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर में अपनी किसी की सत्ता नहीं है, इसलिए ये सारे पदार्थ कभी है और कभी नहीं है, यानी उत्पत्ति विनाशशील है। सारे भोग, सारे पदार्थ, सारी क्रिया, इन सबसे वो परमात्मा रहित है। कुछ भी समझ में नहीं आओ तो ये इस प्रकार से ध्यान करना कि सब इन विकारों से, आकारों से, गुणों से रहित होकर केवल केवल एक शुद्ध स्वरूप है। अरे वो है कैसा कि चेतन है, सचित चेतन है, जड़ नहीं। जड़ किसको कहते हैं? जो देखने में आवे, जानने में आवे, चिंतन करने में आवे, समझ में आवे, ऐसे जो पदार्थ है वे सब जड़। जिसके द्वारा जाना जावे, समझा जावे, वो सब जड़। और जानने वाला केवल चेतन साक्षी दृष्टा ऐसा परमात्मा चिन्मय ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, चेतन, चेतनों का भी चेतन। इसके लिए भगवान कहते हैं इस कि ये भगवान ने कहा ज्योति सामद ज्योति तम से परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदि सर्वस्वस्तुतम। अध्याय तेरह का ये सत्रह का श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि वो ज्योतियों का ज्योति है, तम जो ज्ञान अंधकार इस पर है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय स्वरूप है, सूक्ष्म और शुद्ध ही अचल जो बुद्धि की वृत्ति है, उसका नाम है ज्ञान। उस ज्ञान के द्वारा जानने में आता है और सबके हृदय के बीच के मां आत्मरूप से विराजमान। ज्योतियों का भी ज्योति یعنی چیتن سروپ جتنی دل جیتیاں ہیں ان کا پرکاش جیتیوں کے تین بھید ہے گرج گھن اور گرینتا گرج اس کو کہتے ہیں کہ جو گھن کرنے میں آئے پکڑنے میں آئے جیسے سوریہ جیتی چندرما جیتی اگنی جیتی سورج جو ہے چندرما جو ہے اگنی جو ہے نکشتر ہے بجلی ہے تارے ہیں یہ سب چمکنے والے جتنے پدارتھ ہے یہ جڑ جوتیاں ہے یہ سب گرج ہے اور گھن جوتیاں کو ہیں تو جس سے یہ سب دیکھے جاتے ہیں جانے جاتے ہیں جیسے اندریاں اور من اور بدھی اندریوں کے بیچ کے ماں نیتر جیتی جو ہے بلوان تو نیتی کے دوارا یہ سب گرہن کرنے میں آتے ہیں سوریہ چندرما بجلی نکشتر تارے آدی سب میں گھر جوتیوں میں سوریہ بڑھ کرتا ہے اور اس کا گرہن نیتر سے ہوتا ہے اس لیے نیتر اندری کا سوریہ کرتا سکتے کارن سے دیتا بھی ہے اور نیتر سے پرے سے جوتی ہے تو من ہے جو من سب اندریوں کا ان کے بچوں کا چنتن کر سکتا ہے سوستھ اس سوکھ میں شریشت اور پہ اور من سے بھی پر جوتی جو ہے وہ بدھ ہے جو من کا بھی وشر